वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वृंदावन धाम के
जय
कृष्ण बलराम के
जय
हरे कृष्णा। तो क्या करो चर्चा बताइए। बुक्स नहीं है ना, एक ही बुक है, बीच बीच में गा लेते हैं भजन। सबने एक एक बुक लाना चाहिए था। तो मैं फिर टेंपल्स के बारे में फिर से रिवाइज करते अपने मेमोरीज को। हम सबने सुना होगा डेटीज के अलग अलग लीलाओं के बारे में। तो अभी जो हमने गीत गाया था उसकी आखिरी लाइन किसे याद है? सदा इस पुरु का मोर मन। तो यह क्या कहते हैं, एसेंस ऑफ ऑल टीचिंग, सारी शिक्षाओं का सार क्या है? यही है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, नरोत्तम दास कह नित्य लीला सुखमय। तो हम अपने आप को चेक करें तो हम किसी न किसी प्रकार से सुख की कामना कर ही रहे हैं, चाहे भक्त बने या ना बने। भक्त बनने का ज़्यादा सुख चाहते हैं। तो मैं रिसेंटली अभी वहाँ गया था, अबू धाबी दुबई, परसों आया तो वहाँ एक लेक्चर दे रहा था। तो उसमें मैं वर्णन कर रहा था मंगल आरती के बारे में, संसार दावा नल लीड लोका। तो मैंने काफ़ी डिवोटेड थे, 250 डिवोटेड थे उस लेक्चर में। तो मैंने कहा किसको यहाँ बैठ के लगता है कि ये संसार दावाग्नि के समान है? तो किसी को नहीं लग रहा था, क्योंकि वहाँ सारा लाइफ एसी में है। किसमें? एसी में, मतलब एयर कंडीशन से बाहर एक मिनट भी कोई व्यक्ति रहता नहीं है वहाँ। घर सेंट्रल एसी, कार बाहर कदम डालते हो अपने अपार्टमेंट से कदम तो कार में एसी। जहाँ भी ऑफिस जाओ, शॉप में जाओ, कोई भी चीज़ ओपन नहीं है वहाँ, कोई भी चीज़ बाहर नहीं है। तो मैंने कहा यहाँ रह के तो मुझे भी भूल गया मैं भी यहाँ संसार दावाग्नि है। तो अल्टीमेटली हम सुख की कामना कर रहे हैं। प्रभुपाद एक बार वहाँ गए थे, हांगकांग या जापान, उनके एक डिसाइपल थे भूरीजन प्रभु और उनकी वाइफ थी जगत तारिणी देवीदासी। ये भूरीजन प्रभु यंग ब्रह्मचारी थे। वो प्रचार करने के लिए प्रभुपाद ने कहा बॉस्टन से आप चले जाओ, वहाँ प्रीच करो। तो वहाँ जो जगत तारिणी देवीदासी है वो फिल्म स्टार थी, हाँ, लॉस एंजलिस में। तो ये डिवोटीज जहाँ ये फिल्म शूटिंग आदि होती हैं वहाँ जाते थे कीर्तन हरिनाम करने के लिए। तो वो उनसे आकृष्ट हो गए डिवोटीज का कीर्तन, और इतने खुश हैं, इतने सुखमय हैं। तो उसने कहा मुझे भी ज्वाइन करना है। वो तो फिल्म स्टार थे और सारी चीजें छोड़कर अपना बैग भर के फुल टाइम डिवोटी बनी टेम्पल में। तो सारे डिवोटीज प्रभुपाद वगैरह आश्चर्यचकित हुए हैं, और प्रभुपाद ने कहा मैंने आपके लिए एक अच्छा पति ढूंढा है जगत तारिणी को कहा। उसने कहा कौन है प्रभुपाद? वो कहते हैं एक डिवोटी वहां प्रीच कर रहा है जापान, वहां हांगकांग, जहाँ कौन सी कंट्री में था, कि जाओ उससे जाकर मैरिज करो। अभी इन दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे। तो वो गए और उनके साथ उनका विवाह होता है। विवाह में केवल तीन ही डिवोटी थे, पति पत्नी और एक डिवोटी था। गुरुद्वारा में उन्होंने विवाह किया प्रभुपाद के ऑर्डर से, और फिर प्रभुपाद ने कहा आप मिलकर प्रचार करो। तो प्रचार कैसे करते थे वो भुरीजन प्रभु, तो वो मृदंग गले में डाल के रोड पर कीर्तन करते थे, उनके पीछे उनकी वाइफ कौन जगत तारिणी करताल बजा बजा कर हरिनाम, दो ही डिवोटीज बस। हरिनाम के लिए हमें कितने डिवोटीज चाहिए? साउंड सिस्टम चाहिए, गाड़ी चाहिए, हमें सब कुछ फैसिलिटी चाहिए। लेकिन ये इतने सिंसियर थे पति पत्नी, तो ये महाप्रभु के मिशन का ये खासियत है क्या कि यहाँ कोई भी व्यक्ति प्रीच कर सकता है, यहाँ कोई बड़ा सन्यासी होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बड़ा ब्रह्मचारी या वानप्रस्था या गृहस्था, कोई भी किसी भी आश्रम में रहकर किसी भी आयु में, चाहे वो क्वालिफाइड हो अनक्वालिफाइड हो, स्त्री हो पुरुष हो, यदि वो सिंसियर है स्पिरिचुअल मास्टर के इंस्ट्रक्शंस के प्रति और चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग्स को जिसने गंभीरता से लिया है, वो मिरेकल कर सकता है अपने लाइफ में। तो ये गए, इन दोनों ने इतना प्रचार किया, बड़े बड़े लोग आकृष्ट हो गए और फिर वो माताजी स्कूल में प्रीच करने लगी। इतने सारे बच्चे 200-400 बच्चे क्लासेस अटेंड करते थे। फिर इनको लगा कि प्रभुपाद को बुलाना चाहिए, हाँ, तो प्रभुपाद को इनवाइट किया। प्रभुपाद बहुत खुश हो गए। प्रभुपाद वहां आते हैं और ये लोग प्रभुपाद के लेक्चर्स ऑर्गेनाइज किए, फिर बच्चों के लिए क्लासेस क्लास रखा प्रभुपाद का। तो प्रभुपाद का सेम स्टाइल है, चाहे वो बच्चे हो या बूढ़े हो या जो भी हो, आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, हरि नाम। तो फिर प्रभुपाद ने ये संसार दावाग्नि के बारे में बोलना शुरू किया, हाँ, दावाग्नि वगैरह। तो पूरा लेक्चर दिया। प्रभुपाद ने कहा एनी क्वेश्चंस, एक बच्चे ने हाथ ऊपर किया, कहते प्रभु, बच्चा कहता है प्रभुपाद, हाँ, ये जो आग है दावाग्नि है वो किसने लगाई थी? प्रभुपाद कहते हैं दावाग्नि कोई लगाता नहीं है, वो अपने आप लग जाती है। तो वैसे आप अपने लाइफ को हम भी देखें, चाहे हम सिटीज में रह रहे या जहां मर्जी, लेकिन हम कभी अनुभव नहीं करते कि रियली में क्या हो रहा हूं, जल रहा हूं, संसार दावाग्नि में जल रहा हूं। और डिसाइपल मीन्स एक्चुअली वही व्यक्ति डिसाइपल क्वालिफाइड है गुरु को रिसीव करने के लिए अपने लाइफ में, जिसको ये अनुभव हो गया है कि मैं वास्तव में तवे के ऊपर फ्राई हो रहा हूं। क्या तवे के ऊपर आप जानते हो ना, कोई चीज आवाज करती है, तड़पती है, जल के होती है। तो वही व्यक्ति बहुत ईगरली स्पिरिचुअली गुरु के चरणों में पकड़ के रह सकता है या उन्नति कर सकता है, जिस व्यक्ति ने अनुभव किया है कि मेरा लाइफ वास्तव में तप रहा है और मुझे सॉल्यूशन चाहिए। इसलिए गुरु को क्या कहा गया है, त्राणाय कारुण्य घनाघनत्वम, बादलों के समान है, अनलिमिटेड वर्षा करते हैं, दावाग्नि केवल उसी से ही बुझ सकती है। तो इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर इस गीत में कहते हैं, नरोत्तम दासे कहे नित्य लीला सुखमय। अभी कई चीजें हमें सुखमय लगती हैं, क्या क्या चीजें सुखमय लगती है बताइए, हाँ पदमपुरी प्रभु, क्या क्या सुखमय लगता है? और पीछे और क्या क्या हमें सुखमय लगता है दामोदर प्रिया प्रभु? मनी सुखमय, और यहाँ मनी प्लांट है इनके पास।
जो भी मटेरियल चीजें हम जो भी कुछ पानी कोशिश करते हैं मिल जाता है तो बड़ा सुखी,
हाँ सुखमय है कि नहीं? और क्या हो सकता है, बच्चों में छोटे छोटे बच्चे जब तोतली बोले बोलते हैं ना माता पिता को, वो सबसे अधिक आनंददायी है। तो मतलब कई चीजें हमारी लाइफ में बहुत सुखमय है लगती है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि एक न एक दिन हमारे दुख का कारण बनेगी ही, निश्चित रूप से, उसमें कोई संशय नहीं है। तो इसलिए कुछ चीज सुखमय हो सकती है, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, तो एक ही चीज है, क्या है, नित्य लीला। किसकी नित्य लीला? कृष्ण की नित्य लीला, नित्य लीला सुखमय। कहते ऐसी सुखमय जो कृष्ण की नित्य लीलाएं हैं, वो क्या हो जाए तब मैं सुखी बनूंगा, जब वो मेरे मन में स्फुरित हो जाए कंटिन्यूअसली। डिवोटी का मतलब ही है जिसका मन हृदय में कृष्ण की लीलाएं उमड़ती है ना। जैसे हमें कोई दुख होता है, हम रोते हैं ना, अंदर से बड़ा दुख होता है, मुंह बंद कर करके रोते हैं ना, बीच बीच में आता रहता है बाहर ना क्राइंग वो, तो वैसे ही है। डिवोटी मीन्स जिसके हृदय में कृष्ण की लीलाएं निरंतर स्फुरित होती है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि इससे अधिक सुखमय चीज या वस्तु इस संसार में नहीं है। और वास्तव में ये चीज सारी शिक्षाओं का सार है, उपदेश अमृत में रूप गोस्वामी वही कहते हैं, वो कहते हैं कि भगवान के नाम रूप गुण लीला उनका उच्चारण एक डिवोटी को 24 आवर्स करना चाहिए। हाँ, एसेंस ऑफ ऑल टीचिंग वो कहते हैं, सारम में भूल गया वो शब्द जो उन्होंने यूज किया है, अखिल उपदेश सारम वो कहते हैं, अखिल उपदेश सारम, जितने भी इंस्ट्रक्शंस है उनका एक में एसेंस या सार यही है कि कृष्ण के नाम रूप गुण लीला और पांचवी वस्तु है धाम। ये पांचों चीजें में हमारा मन हमारा चित्त कंटिन्यूअसली लग जाना चाहिए, और वो यदि नहीं है तो हमारा जीवन वास्तव में विफल है। इसलिए वृंदावन आने का क्वालिफिकेशन क्या है या कौन व्यक्ति वृंदावन में प्रवेश कर सकता है, तो वो व्यक्ति वृंदावन में प्रवेश कर सकता है, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, विषया छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन, कबे हम हेरी बो श्री वृंदावन। कब वो दिन आएगा जब मेरा चित्त विषयों से दूर हो जाएगा, और तब मैं वास्तव में वृंदावन की जो रियलिटी है, वृंदावन की जो वास्तविकता है, उसे पहचान पाऊंगा। इसलिए विषय विषानले, विषयों से ही हम आग में कूद पड़ते हैं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर इन दो गीतों में वो कहते हैं, एक तो कहते हैं विषया छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन, कब मेरा मन विषयों को छोड़कर शुद्ध हो जाएगा, बल्कि हम विषयों में अधिक से अधिक डूबना चाहते हैं क्योंकि विषयों में अत्यधिक आनंद है। लेकिन फिर वो दूसरी लाइन में कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर, ये विषय किसके समान है, विष के समान है। इसलिए विषय शब्द में क्या रखा है, विष, पॉइजन। विषय वो दूसरे सॉन्ग में कहते हैं विषय विषानले देवानिशी ही आज्वले जुड़ाए ते ना कहीं नो उपाय। वो रो रहे हैं, कौन रो रहे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि ये जो विषय है जो मुझे बहुत आनंद लगता है इन विषयों का उपभोग करने में, लेकिन ये विषय विष के समान है, और ऐसा विष फायर से उसकी तुलना की गई है, और ऐसे विष रूपी आग में हे कृष्ण मैं निरंतर क्या हो रहा हूं, जल रहा हूं। जुड़ा इते ना कहीं नो उपाय, मुझे इसे शांत होने के लिए कोई उपाय मिल नहीं रहा है, और इसी कारण से इस विषय विष रूपी विषयों का भोग करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, सत्संग छाड़े कैनो असत्य विलास। दूसरे गीत में वो कहते हैं विषयों का भोग करने के लिए मैंने क्या छोड़ दिया अपने लाइफ से, भक्तों का संग, सत्संग को छोड़ दिया, सत्संग छाड़े कैनो असत्य विलास। विलास मीन्स एंजॉय, आनंद ले रहा हूं। कौन सी चीज में आनंद ले रहा हूं मैं, असत एसोसिएशन में। सत्संग छाड़ी कहनु असत्य विलास जे कारण लागी आमा कर्म बंध पाश, और उसी कारण से मुझे इस जगत के जो कर्म बंध हैं वो पाश बांध रहे हैं। तो इसलिए वृंदावन में तभी व्यक्ति एंट्री कर सकता है जब व्यक्ति नरोत्तम दास जैसे आचार्यों की जो अनुपम शिक्षाएं हैं उनको समझ सकता है। प्रभुपाद बारंबार कहा करते थे वृंदावन में प्रवेश करने का मतलब ही है इन आचार्यों के चरणों का अनुगत होना। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं तांदेरा चरण सेवी भक्त सनेवास जनमे जनमे है यही अभिलाष। तो नरोत्तम दास ठाकुर का यहाँ समाधि है। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं वृंदावन में तभी प्रवेश हो सकता है जब एक भक्त के हृदय में तांदेरा चरण सेवी, जो वैष्णव परंपरा के जो आचार्य हैं, उनके चरणों की सेवा करने की एकमात्र अभिलाषा होगी, और भक्तों के संग में निवास करने की कामना अपने हृदय में धारण करेगा, तभी व्यक्ति वास्तव में वृंदावन में प्रवेश करने का अधिकारी है। हाँ, प्रभुपाद हमेशा एक लेटर में लिखते हैं कि कोई व्यक्ति फ्लाइट ट्रेन या कार या बस पकड़ के वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता। वृंदावन प्रवेश करने के लिए तो एटीट्यूड की आवश्यकता है, राइट एटीट्यूड की आवश्यकता है, और राइट एटीट्यूड क्या है, नरोत्तम दास ठाकुर के गीतों को हम पढ़ते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर आइडियल उदाहरण है कैसे उन्होंने ब्रज में प्रवेश किया। वो राजा के पुत्र थे कृष्ण दत्त चंद्र, राजकुमार होने के बावजूद भी उनके हृदय में वृंदावन जाने की कामना थी, अभिलाषा थी। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर जब अपने छोटे आयु में खेतुरी ग्राम में रहा करते थे, तो उनको विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के प्रति प्रगाढ़ आसक्ति थी, और इसलिए राधा कृष्ण के प्रति आसक्ति का उदय तभी संभव है जब व्यक्ति गौर निताय के चरणों का आश्रय ग्रहण करता है। जितना हम आदि गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की लीलाओं को समझते हैं, चर्चा करते हैं, मनन करते हैं, तो उतने ही अधिक हम राधा कृष्ण के क्लोज अपने आप को अनुभव करते हैं। इसी कारण से चैतन्य महाप्रभु की सर्वश्रेष्ठ देन है। कोई व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु से अटैच्ड होता है तो स्वाभाविक रूप से उसका आकर्षण राधा कृष्ण के लिए होता है। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर अपने स्कूल डेज में जब स्कूल से आते थे तो अपने बैग को फेंक देते थे, फेंक के उनके गांव में एक कृष्णदास ब्राह्मण था, उनके पास दौड़ते थे। कृष्णदास जो गौर कथा के स्टोर हाउस थे, क्या थे? गौर कथा के स्टोर हाउस थे, भंडार थे। हाँ, जैसे वृंदावन में रघुनाथ दास गोस्वामी थे, जिनके पास कौन जाते थे सुनने के लिए? कृष्णदास कविराज। तो वैसे ही वो ब्राह्मण हमेशा महाप्रभु के भक्त और चैतन्य महाप्रभु के बारे में चर्चा करता था, जिसके कारण नरोत्तम दास ठाकुर के पांव अपने घर में नहीं रहते थे, बाहर दौड़ते थे। जैसे आइसक्रीम की गाड़ी घर के बाहर आती है तो बच्चे कैसे दौड़ते है ना, तो वैसे ही नरोत्तम दास ठाकुर दौड़ते थे कहां? कृष्णदास कविराज, कृष्णदास जो ब्राह्मण था, और वो उनसे सुना करते थे। इतना आसक्ति हो गया कि उनका मन घर में लगना असंभव हो गया। फिर हम सुनते हैं ऐसे महाप्रभु उनके लिए प्रेम प्रदान करते हैं। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर भागकर वृंदावन आते हैं, और वृंदावन आकर सबसे पहला शेल्टर किसका लेना चाहते हैं? वो लोकनाथ गोस्वामी। वृंदावन, वृंदावन में हमें किसके अनुगत होकर भ्रमण करना चाहिए? डिवोटीज के अनुगत। इसलिए वृंदावन डिवोशन एंड डेविएशन दोनों का स्थान है। या डिवोशन हमें कम प्राप्त होता है, लेकिन हमेशा क्या होते रहते हम? डेविएट होते रहते, चाहे यात्राज में जाओ या जैसे मर्जी जहां जाओ, हम हमेशा अधिकतर डेविएट होते रहते हैं। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर आते हैं और उनको नित्यानंद प्रभु ने कहा था, या महाप्रभु ने भी कहा था, आप लोकनाथ गोस्वामी का शेल्टर ग्रहण करो। तो वो राजकुमार है, और लोकनाथ गोस्वामी ने भी व्रत लिया था। कौन सा व्रत लिया था? मैं कोई शिष्य स्वीकारूंगा नहीं, हम तो चाहते अनुयायी इकट्ठा हो, है ना, हा धनम हा जनम और हा सुंदरी। और महाप्रभु क्या कहते हैं? न धनम न जनम न सुंदरी। तो यहाँ लोकनाथ गोस्वामी कहते अनुयायी नहीं, लेकिन वहां उनको जब कहा कि आपको बल्कि ये फिक्स थे कि मैं किसी को शिष्य नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैं क्वालिफाइड नहीं हूं, मुझसे अधिक बड़े बड़े डिवोटीज हैं, वो योग्य है। तो लोकनाथ गोस्वामी निर्जम भजन करते थे, और भजन के साथ ही साथ कृष्ण की लीला जो स्थलियां हैं उनको ढूंढ के निकालते थे। तो ऐसे लोकनाथ गोस्वामी ने तो निश्चय किया था, और यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर ने भी क्या किया था? निश्चय किया था, हाँ मैं शेल्टर ग्रहण करूंगा तो लोकनाथ गोस्वामी का। तो लोकनाथ गोस्वामी तो तैयार नहीं थे। लोकनाथ गोस्वामी जब मॉर्निंग में नेचर कॉल अटेंड करने के लिए जाते थे मल त्याग करने, तो नरोत्तम दास ठाकुर जाते हैं और झाड़ू लेकर जाते हैं। अब सोचो कितना बड़ा ये ग्रेड है गुरु का शेल्टर या महान आचार्य का शेल्टर प्राप्त करने के लिए। तो एक ही चीज है भक्ति को हम खरीद सकते हैं, वो किस चीज से? लवल्यम ग्रेड। जैसे वर्णन आता है राधा रानी भी जब जावट में रहा करती थी, उनकी सास और कौन थे? ननंद, जटिला और कुटिला। तो कृष्ण से मिलना उनके लिए बड़ा कठिन था। तो श्रीमती राधिका क्या करती थी कि कैसे मैं भागू भी या फिर जाऊंगी रात्रि में तो जहां कांटे वगैरह होंगे तो उसका प्रैक्टिस घर में करती थी। बहुत सारे कटीले झाड़ियां ला के ऐसे डालते थे और उसके चल उसके ऊपर चलने का क्या करते थे? प्रैक्टिस करते थे कि मुझे नाइट में कृष्ण के लिए दौड़ना भी पड़े, कांटे आदि हो तो भी मैं इस प्रैक्टिस से सरलता से कृष्ण के पास जा सकती हूँ। तो वैसी ही लालसा लोकनाथ गोस्वामी का शेल्टर प्राप्त करने के लिए नरोत्तम दास ठाकुर के हृदय में थी। नरोत्तम दास ठाकुर जाते हैं और वो क्लीन करने लगते वहां, झाड़ू से सफाई आदि करते हैं, और वहां फ्रेश मिट्टी रखा करते थे, और झाड़ू लगा के एरिया पूरा क्लीन करते थे, 15 दिन एक महीना हो गया। लोकनाथ गोस्वामी देखते हैं कि कहां कौन व्यक्ति है जो मैं जहां मल त्याग कर रहा हूं स्थान को क्लीन कर रहा है। तो एक दिन और नरोत्तम दास ठाकुर ऐसे नहीं कि वो क्लीन करके भाग जाते थे, हमें तो वाटर और सारे चीजों के साथ कहा जाए कि आप टॉयलेट क्लीनिंग करो या रूम सफाई करो तो भी हमसे होता नहीं है। लेकिन यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर ने लोकनाथ गोस्वामी की सारी उन चीजों को क्लीन करते थे और वो झाड़ू को क्या करते थे, अपने छाती में लगाते थे, छाती में लगाकर रोया करते थे कि हा लोकनाथ, हे लोकनाथ गोस्वामी, आप मेरे ऊपर क्या करो, कृपा करो। तो डिवोशनल सर्विस में एक ही चीज आवश्यक है, भक्तिमय, ये इसको कहते हैं पाथ ऑफ ग्रेस, एक कृपा का रास्ता है। और एक डिवोटी के लिए हमेशा ही आध्यात्मिक कृपा प्राप्त करने के लिए लालायित होना चाहिए। और डिवोटी सदैव चाहता है कि मेरे जीवन में वास्तव में गुरु, वैष्णव और कृष्ण, इन तीनों की कृपा की आवश्यकता है। कुछ डिवोटी होते हैं गुरु गुरु करते रहते हैं, वैष्णव को क्या करते हैं, थप्पड़ मारकर साइड में करते हैं। रामानुजाचार्य के एक डिसाइपल थे, रामानुजाचार्य अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, तो जब जा रहे थे तो उन्होंने अपने दो ब्रह्मचारी शिष्यों को कहा, जाओ उस टाउन में हम रुकेंगे सारे, वहां जाकर एक धनवान उनका शिष्य था, नाम भूल गए मैं, उनके घर जाओ और उनको कहो कि गुरुदेव आ रहे हैं, आप सबको अरेंजमेंट करना है, बहुत सारे शिष्यों के साथ आ रहे हैं। तो ये दो डिवोटीज गए उन व्यक्ति के घर जो बहुत धनवान था, जिसके पास सारी सुविधाएं थी, वो गया, ये दोनों गए और इन दोनों ने उसको मैसेज दिया कि श्रीपाद रामानुजाचार्य अपने शिष्यों के साथ आ रहे हैं। तो वो तैयारी करने के लिए लग गया और सब कुछ हो गया, लेकिन ये दो लोग जो मैसेज देने गए थे उनको उन्होंने कुछ पूछा नहीं, उन पानी के लिए भी नहीं पूछा। तो वो बेचारे वैसे ही आए रोते हुए, और वो रोते हुए आए, वहां रोए तो नहीं होंगे, दुखी होकर आए। तो रामानुजाचार्य ने सबसे पहले पूछा, उन्होंने आपके साथ कैसे, आपको कैसे ट्रीट किया, किसको पूछा, उन अपने दो डिसाइपल्स को जिनको रामानुजाचार्य ने भेजा था। तो उन्होंने कहा हम वहां गए तो हमें बैठने के लिए भी घर में नहीं बुलाया, आसन नहीं दिया, इवन पानी भी नहीं दिया। तो फिर उन्होंने कहा कि उनके घर हम जाएंगे नहीं, हम कहां जाएंगे, और जो सबसे गरीब डिसाइपल था जिनके घर में एक ही वस्त्र था पहनने के लिए, जब हस्बैंड बाहर ब्राह्मण जाता था कुछ करने, भिक्षायापन करने, तो अपना ऊपर पत्नी का वो जो भी एक कपड़ा वो पहन के जाता था, और पत्नी जब बाहर जाती थी तो एक कपड़ा नहीं पहन पाते थे। तो पति बाहर गए थे और पत्नी अंदर थी, दोनों रामानुजाचार्य के डिसाइपल थे। तो जब रामानुजाचार्य अपने शिष्यों के साथ उनके घर में गए तो देखा कोई नहीं, घर में नॉक किया तो अंदर उनके डिसाइपल माता जी थी, रामानुजाचार्य पहचान गए, वो बाहर नहीं आ सकते थे, वस्त्र नहीं थे उनके पास। तो रामानुजाचार्य ने अपना ऊपर ही जो वस्त्र है निकाला और अंदर फेंका, और उस माता ने स्वीकार किया और फिर रामानुजाचार्य का स्वागत किया, रामानुजाचार्य को बैठने का स्थान दिया, उनके लिए काफी सारी सेवाएं की। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर भी इतने अधिक कृपा चाहते थे इन आचार्यों के, विशेष रूप से लोकनाथ गोस्वामी के, और वो झाड़ुओं को लेकर भी अपने छाती में लगाकर रोया करते थे कि हाँ मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मुझे कृपा की आवश्यकता है मेरे लाइफ में। तो एक दिन लोकनाथ गोस्वामी छुपके से देखते कि कौन है वो जो मेरी ऐसी सेवाएं करता है जो इस संसार में कोई भी नहीं करना चाहता, इवन हम अपने माता पिता की भी इस प्रकार की सेवा नहीं करना चाहते, हम मेड रखेंगे, हॉस्पिटलाइज करेंगे, लेकिन हम सर्व नहीं करना चाहेंगे, ये टेंडेंसी है। तो लेकिन जब जब नरोत्तम दास ठाकुर को ये करते हुए लोकनाथ गोस्वामी ने देखा तो लोकनाथ गोस्वामी का हृदय पिघल गया, उन्होंने नरोत्तम को बुलाया, नरोत्तम दास ठाकुर उनके पास आते हैं, और फिर भी इनके हृदय में थी इच्छा कि मैं दीक्षा नहीं दूंगा। लेकिन उस रात्रि में श्री चैतन्य महाप्रभु उनके स्वप्न में आकर कहते कि लोकनाथ तुम नरोत्तम दास ठाकुर को दीक्षा दो, क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर जैसा डिवोटी इस संसार में दुर्लभ है, कि नरोत्तम दास ठाकुर मेरे गुणों का इतना मधुरता से गान करता है, कीर्तन आदि करता है, केवल उनके कीर्तन को सुनने मात्र से पत्थर भी पिघलने लगते हैं, लकड़ भी पिघलने लगता है। तो बद्ध जीव कोई भी व्यक्ति नरोत्तम दास ठाकुर के गीतों को, नरोत्तम दास ठाकुर के कीर्तन को सुनेगा तो उनका रुच का हृदय पिघल जाएगा। इसलिए प्रभुपाद सबसे अधिक आनंद लेते थे किसी के गीतों को गाने के लिए, तो वो कौन आचार्य थे? नरोत्तम दास ठाकुर। प्रभुपाद लंदन गए, जब वह जॉर्ज हैरिसन ने उनको रहने के लिए एक प्रॉपर्टी दी थी, तो प्रभुपाद उनके डिसाइपल गुरुदास, यमुना माता जी, पुरुषोत्तम, इन सबके साथ रहते थे। और हर रोज प्रभुपाद का कार्यक्रम था, लंच करते थे, कुर्ता निकाल देते थे, टांग देते थे और डिसाइपल्स को कहते हारमोनियम लेके आओ, और अकेले गाया करते थे वैष्णव सॉन्ग्स और कीर्तन। तो एक दिन प्रभुपाद गा रहे थे तो प्रभुपाद के सामने यमुना माता जी बैठे थे, तो यमुना माता जी को प्रभुपाद कहते, यमुना आपका कौन सा सॉन्ग फेवरेट है? तो यमुना देवीदास जी क्या कहते, मेरा कौन सा सॉन्ग फेवरेट है? शिक्षाष्टकम। कौन सा? तो अभी उसको भी लगा, मुझे पूछा है तो मैं भी आपको पूछूंगी। तो यमुना दासी ने पूछा, यमुना देवी दासी ने, प्रभुपाद आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग है? तो प्रभुपाद ने कहा, नरोत्तम दास ठाकुर का हरे हरे विफले जन्म गोवाइनो, ये जो गीत है वो मेरा सबसे फेवरेट है। हरे हरे विफले जन्म गोवाइनो, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया वेश खाइनो। तब देखो इतने महान आचार्य प्रभुपाद को ये शब्द बोलने की कोई आवश्यकता है? नहीं है। लेकिन यही उत्तम भक्त का लक्षण है। क्या लक्षण है? चैतन्य चरितमृत कहता है, उत्तम हैया अपना के मान्या धम। वो डिवोटी बहुत उन्नत होता है लेकिन सदैव इस आचरण, इस प्रकार का आचरण करता है कि वो सबसे अधिक नीच है, सबसे अधिक अधम है। और यही भावना गौड़िया वैष्णव आचार्यों की है, और यही चेतना चाहिए। किसी भी महान आचार्यों का हम जीवन देखते हैं, उनके हृदय, उनके प्रार्थनाएं, उनका जो लेखन है उसमें इन्हीं चीजों, इन सब चीजों का प्राकट्य होता है। तो फिर लोकनाथ गोस्वामी उनको दीक्षा देते हैं। एक ग्रंथ में बहुत डिटेल वर्णन आता है कि किस प्रकार से उनका दीक्षा सेरेमनी हुआ। नरोत्तम दास ठाकुर को कहा, जाओ सबसे पहले स्नान करके आओ, सारे वैष्णवों को प्रेयर करके आओ और फिर मेरे पास आना। तो नरोत्तम दास ठाकुर जाते हैं, फिर प्रेयर करके आते हैं, फिर उनको दीक्षा आदि देते हैं। और पहले तो जब उनको कहा कि एक साल हम एक दूसरे को चेक करेंगे, जैसे गुरु स्वीकार करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, एक साल देखना चाहिए गुरु ठीक है मेरे लिए कि नहीं, और गुरु ने भी देखना चाहिए शिष्य योग्य है या अयोग्य है। तो ये दोनों, फिर उनको बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन दिए, उनको कहा आपको भक्ति रसामृत सिंधु दीक्षा से पहले पढ़ना होगा, ऐसे कई ग्रंथ बोले। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने सारे ग्रंथ पढ़े और फिर 100,000 नाम वो डेली चांट करते थे और फिर दीक्षा दिया, जिनमें सारे प्रोमिनेंट गोस्वामी को उन्होंने बुलाया, सारे भक्तों के सामने नरोत्तम दास ठाकुर का दीक्षा हुआ। और फिर नरोत्तम दास ठाकुर के साथ लोकनाथ गोस्वामी इस स्थान में बैठकर जप करते थे। एक बार लोकनाथ गोस्वामी और नरोत्तम दास ठाकुर चांटिंग कर रहे थे, दोनों मिलके बिल्कुल गहरे अटेंटिव चांटिंग हो रहा था, तो एक व्यक्ति आता है, दरवाजा खटखटाते कहते, हरिबोल मुझे पानी चाहिए। क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो इतने निमग्न हो गए थे लोकनाथ गोस्वामी कि उनको किसी चीज की सूझबूझ नहीं थी। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर थोड़े इन अटेंटिव से थे, वो वहां से उठ के पानी ढूंढने लगते हैं पानी पिलाने के लिए। बाद में लोकनाथ गोस्वामी उनकी क्लास लगाते, कहते हैं कि तुम राधा कृष्ण की सेवा में योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम गंभीरता से हरि नाम का शेल्टर ग्रहण नहीं कर रहे हो। इस प्रकार से इनको कहते हैं और बहुत जोर देते थे कि हरि नाम का उच्चारण करो। और उन्होंने कहा, हे नरोत्तम, तुम मुझसे दीक्षा ली है लेकिन शिक्षा किससे ले लो? जीव गोस्वामी से जाकर। इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर जीव गोस्वामी से शिक्षा लेते हैं और जीव गोस्वामी से ये तीन डिवोटीज पढ़ा करते थे, श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद प्रभु और नरोत्तम दास ठाकुर। और फिर तीनों को वो सेवा देते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, और अपने अपने आध्यात्मिक गुरु के परमिशन से वो लोग चले जाते बंगाल, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और वहां जाकर नरोत्तम दास ठाकुर ने वृंदावन का वियोग अनुभव किया। इतना अधिक वियोग कि नरोत्तम दास ठाकुर दिन रात वृंदावन के वियोग में रोया करते थे। क्यों हमें वृंदावन आना चाहिए? इसलिए आना चाहिए कि वृंदावन से हम वियोग की अनुभूति करें। वृंदावन हमारा असली निवास स्थान है, असली घर है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका जा रहे थे, नाव में बैठे थे, और जब बोस्टन के बंदरगाह में वो नाव पहुंचती है तो प्रभुपाद अपने उससे पहले डायरी में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आज मुझे वृंदावन का वियोग महसूस हो रहा है, और विशेष रूप से मुझे राधा दामोदर और ऐसे तीन, राधा मदन मोहन और राधा रमन, ऐसे तीन डिटीज का नाम लेते हैं कि इनसे वियोग में महसूस कर रहा हूं। तो इस प्रकार से वृंदावन से वियोग महसूस करने के लिए हमें वृंदावन आते रहना चाहिए और वृंदावन का अनुभव करना चाहिए। वृंदावन आने का मतलब ही है अधिक से अधिक नाम रूप गुण लीला, इन चार चीजों का शेल्टर ग्रहण करना। एक बार प्रभुपाद अपने डिसाइपल्स को मायापुर से वृंदावन लेके आए और प्रभुपाद अपने रूम में प्रसाद ले रहे थे और कहा कि मैं क्लास लूंगा। तो जब क्लास देने के लिए प्रभुपाद गए, चार पांच ही डिवोटीज थे। प्रभुपाद ने कहा डिवोटीज कहां चले गए? तो वहां प्रभुपाद के बाकी डिसाइपल्स कहते हैं वो मंदिर दर्शन करने के लिए गए हैं। प्रभुपाद ने कहा वो सारे रास्कल्स क्या दर्शन करेंगे, हाँ जब वो गुरु के द्वारा कृष्ण कथा को सुनेंगे नहीं तो ये चमड़ी के आंखों से क्या धाम को देखेंगे और क्या डिटीज को देखेंगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण एक्टिविटी वृंदावन के प्रति प्रेम को जागृत करने के लिए है भगवान का नाम, भगवान के रूप गुण लीला के बारे में अधिक से अधिक श्रवण और कीर्तन करना। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा जय स्थाने वैष्णव गण से स्थान वृंदावन। वृंदावन कौन सा स्थान है? जहां भक्तों का एसोसिएशन है, जहां वैष्णव है। इसलिए भागवतम में कहा है स एव गोखरा, वो गाय या गधे के समान है जो केवल तीर्थों में स्नान करने के लिए जाता है, वहां जाकर भक्तों के संग का लाभ नहीं उठाता। तो इसलिए शास्त्र हमें प्रेरित करते हैं वृंदावन का शेल्टर ग्रहण करने के बारे में। वृंदावन का आश्रय लेने का मतलब ही है भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का आश्रय लेना, जो कृष्ण से अभिन्न है, और इन महान आचार्यों की कृपा की कामना करना, इन आचार्यों के समाधि स्थलों में जाकर प्रार्थना करना, चिल्लाना, रोना और अपने सारे आध्यात्मिक समस्याओं को उनके सामने रखना। उनकी शक्ति हमें मिलेगी तभी हम हरि नाम का उच्चारण कर सकते हैं, उनकी शक्ति से ही वृंदावन को हम अनुभव कर सकते हैं, उनके कृपा से ही हम वृंदावन में भ्रमण कर सकते हैं और उनकी कृपा से ही वृंदावन में प्रवेश कर सकते हैं। तो शायद दर्शन खुल गया है तो आप सब लोग दर्शन कर सकते हैं और फिर हम थोड़ा कंटिन्यू करेंगे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे,
वृंदावन धाम के
जय,
नरोत्तम दास ठाकुर के समवेत गौर भक्त वृंद के
जय,
निताई गौर प्रेमानंदे।